राम हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भगत भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे स्कंद के 17वें अध्याय में धरा धरती पृथ्वी माता पृथु महाराज को रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। पृथु महाराज भगवान के अवतार, एक राजा सारी प्रजा का पालन पोषण पुत्र के समान करता है। उस भाव से जब पृथ्वी से अन्न का उत्पादन नहीं होने लगा तो पृथ्वी के ऊपर क्रोधित हुए, तो पृथ्वी उनको जो प्रार्थना कर रही है उनके अंतर्गत आज हम 4:17-32 श्लोक से आगे श्रवण शुरू करते हैं। पृथ्वी देवी गाय के रूप में कह रही है, न्यूनं बतईशस्य समिहितं जनै तन्मायया दुर्जया अकीर्त्यात्मभिः न लक्ष्यते यस्तव अक्रोध अकार्य यो अनेक एक प्रतश्च ईश्वरः। न्यूनं निश्चित रूप से बत ये भी सत्य है, समहितम जनही समहितम ईशस ईशस मतलब हे ईश्वर, समहितम जनही जो कार्य है उनके पीछे जो योजनाएं हैं सब जीवों की, तन माया वो भगवान आपकी माया के द्वारा है, ये सब के आपकी माया से मोहित है और उसको हम जान क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि माया है दुर्जया। दुर्जया मतलब जिसके ऊपर वश न चले, जो हमारे बस में न आ सके, जिसको हम बस में न कर सके, जैसे दुर्तया है भगवत गीता में, यह दुर्जय है। और जिनको अभी तक अकृत आत्म भी ही, जिनको अभी तक पूरा आत्मा का बोध नहीं है, अनुभव नहीं है, न लक्ष्यते उनको पता ही नहीं लगेगा, यस्त अक्रोध अकार्यद क्या पता नहीं लगेगा कि आप सारी सृष्टि के आदि कारण है, वो तो समझेगा ब्रह्मा जी ही कारण है। ऐसे नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी सृष्टि को आप इस सारी सृष्टि को आप ही करते हैं, ये सृष्टि आपकी हथेली के ऊपर आमले के फ्रूट फल की तरह छोटा सा अखरूट ऐसे पड़ी है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, आप ही ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी को उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, जिनको भगवान की माया ने मोहित कर लिया है वो मेरे को भगवान कहने की मूर्खता करते हैं। हम तो भगवान के योजना में जैसे बैल के नाक में रस्सी डाल के जैसे चलाया जाता है ऐसे चलता है, ऐसे हम भगवान की आज्ञा से सारे कार्य करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। तो यहां वो बात कही जा रही है, अक्रोध अकार्यद यो अनेक एक परस्तस है, भगवान एक परंतु अनेक कार्य अनेक अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं, च ईश्वरः और वो ही स्वामी है सबका, वो एक है, सब कारणों का आदि कारण एक है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, पृथ्वी देवी कहते हैं, हे मेरे नाथ आप एक ही हैं, निश्चित रूप से आप एक हैं, परंतु आपके अचिंत्य शक्तियों के द्वारा आप नाना रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे गुण अवतार के रूप में ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और उसके द्वारा इस एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि कराते हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड है और कई ब्रह्मा है उनके द्वारा सृष्टि करा लेते हैं। इसलिए आप ही साक्षात सब कारणों के आदि कारण परम पुरुष भगवान हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो अकृत आत्म भी है, अपने आत्मा के विषय में अपने जिसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है वो ये बात नहीं जान सकते हैं। क्या नहीं जान सकते? आपने कार्यों को, आपके इन सब दिव्य कार्यों को जैसे आप अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा करते हैं वो नहीं जान सकते हैं ऐसे लोग जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अधूरे हैं। क्यों उनको क्या होगा, क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि उनके ऊपर आपकी माया ने पर्दा डाल रखा है, उनकी आंखों के ऊपर आपकी माया का पर्दा है। तो माया के पर्दे के कारण वो आपको देख नहीं सकते, आपके कार्यों को जान नहीं सकते। तो भगवान तो अपने आप को योग माया से ही ढक के रखते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के ऊपर भगवान की उस योग माया का एक विस्तार, महामाया है जो त्रिगुण है, त्रिगुणमयी है, वो उनको ढक के रखती है। चक्रवर्ती बात कहते हैं भगवान की योजना है जो सृष्टि आदि की है, उसके दो स्तर है। एक को कहते हैं सर्ग, जो जिसमें भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, और दूसरे को कहते हैं विसर्ग, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो एक प्रथम सर्ग और दूसरा विसर्ग। ये भगवान आप अपनी शक्तियों के द्वारा, माया के द्वारा करा लेते हैं, परंतु सामान्य लोग जिनकी माया, जिनके मन को माया ने भ्रमित कर लिया है, वो समझ नहीं सकता। अच्छा, प्रश्न क्या है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं आपने कहा मैं धर्मज्ञ हूं और मैं आपको मार रहा हूं, तो क्या आपके कहने का अर्थ है कि मैं अधर्म का कार्य कर रहा हूं? अगर ऐसे मानो पृथ्वी महाराज कहें, तो पृथ्वी कहते नहीं नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहती हूं, परंतु आपकी शक्तियों को समझना संभव नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूं। अकृत आत्म भी का मतलब जिनके मन माया से भ्रमित हो गए हैं वो आपको समझ नहीं सकते हैं। आप तो वो भगवान है जो अपनी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार में कराते हैं, अकार्यत, और आप अकेले हैं, और जो अनेक हैं वो आपकी शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो एक है, परंतु वो एक से अनेक हो जाते हैं। पर अनेक क्या होते हैं? दो प्रकार के अनेक समझना चाहिए। एक भगवान अपने शक्तियों के रूप से अनेक कार्य करते हैं, एक भगवान स्वयं एक से अनेक हो जाते हैं विष्णु के रूप में। तो यहां जो एक से अनेक का वर्णन है वो है शक्तियों का, यहां भगवान के विष्णु रूप के एक से अनेक का वर्णन नहीं है, शक्तियों के द्वारा एक से अनेक का वर्णन। जैसे स्वयं भगवान गुण अवतार के रूप में ब्रह्मा जी बन के सृष्टि करते हैं, ये एक भगवान की शक्ति ही है ब्रह्मा, क्योंकि भगवान शक्ति, ब्रह्मा शक्तिमान नहीं है, शक्ति है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये तीन शक्तियां आपकी, माया शक्ति, योग माया शक्ति, अंतरंग शक्ति, और तीसरी ये जीव जो आपकी है तटस्थ शक्ति, ये तीनों शक्तियां, और भी और आपकी शक्तियां जरा बल क्रिया ज्ञान, ये आपकी शक्तियां हैं, इनके द्वारा आप सारे काम करते हैं। जब तक किसी के ऊपर आपकी कृपा न हो, आपकी करुणा न हो, तब तक भगवान आपके ये सारे कार्य कैसे कोई समझ सकता है? ये आपकी शक्तियों के नाना प्रकार के जो कार्य हैं अपने आप जो हो रहे हैं, इसको समझने के लिए आपकी अहितुकी कृपा और दया चाहिए। पहुपा जी इसके उपरांत लिखते हैं जीव भी भगवान की एक तटस्थ शक्ति ही है, और ब्रह्मा भी इसी जीव के कैटेगरी में आते हैं। ब्रह्मा जी भी जीव है, परंतु बहुत उन्नत आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े उन्नत जीव हैं, बहुत ऊपर के स्तर के ऊपर उठे हुए जीव हैं, जिनको जिसके अंदर भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश किया है ताकि वो सृष्टि का कार्य कर सके। परंतु आदि तो करता, सृष्टि करता तो भगवान ही है, जन्म आदि यस्य जैसे कहते हैं, सब कुछ भगवान से होता है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में जो माया शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। माया का एक अर्थ है शक्ति, तो ब्रह्मा भी भगवान की एक शक्ति है, क्योंकि जीव है तो वो शक्तिमान नहीं है, शक्ति है वो। भगवान शक्तिमान के हाथ में एक कठपुतली की तरह है, जैसे भगवान उसको कहेंगे वैसे वो करेंगे। अब एक कहते हैं कि कब योजनाएं कभी कभी ऐसे दिखती हैं कि एक दूसरे के विरुद्ध है। कोई कहे भगवान सृष्टि करके फिर संहार क्यों करता है, एक दूसरे के विपरीत है सृष्टि करना फिर संहार करना, परंतु इन दोनों के पीछे भगवान की कोई योजना होती है। इन सारी योजनाओं को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि अब इसका आपको विपरीत कार्य और उसके पीछे भगवान की योजना, ये जब आपको समझना हो तो आप भीष्म देव के उस प्रवचन को ध्यान दीजिए, जब वो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि आप धर्मराज हो, आपके भाई धर्म के ऊपर चलने वाले हैं, ब्राह्मणों के सेवक हो, भगवान आपका सहायक है, फिर भी आपके जीवन में इतने सारे रिवर्सेज आए, इतने सारे आपके जीवन में उल्टी गतियां चली, इतना संकट आया, इसके पीछे योजना काल की है और काल कृष्ण के अधीन है। और क्यों ऐसे कृष्ण करते कोई नहीं जान सकता है। और तीन नाम भी लिए हैं, न कपिल जान सकता है, न शंभू जान सकता है, न नारद जान सकता है, ऐसे महाजनों के नाम लिए हैं। भगवान की योजना क्या है, विपरीत काम होता है, किसी की रक्षा करते हैं और किसी को मार देते हैं, दोनों में उसके पीछे भगवान की योजना है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, हम समझ नहीं सकते। तो ये भगवान की योजनाएं हैं। तो इसका अर्थ यहां ये पृथ्वी कहने चाहते, आप मुझे मारना चाहते हैं, ये ऐसे लगता है वैसे आप ही तो मेरे रक्षक हैं, आगे वाले श्लोक में कहती आप ही तो मेरे रक्षक हैं, और अभी आप मुझे मारने वाले दिख रहे हैं, ये विपरीत कार्य है, इसके पीछे भी कोई आपकी योजना होगी, हम नहीं समझ सकते हैं, परंतु आपकी योजना को समझने के लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। इसका मतलब हमारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो भगवान का शरणागत भक्त है तो उसके पीछे भी भगवान की योजना होती है, कोई उद्देश्य होता है, कोई चीज इस दुनिया में। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज नो एक्सीडेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज ए डेफिनेट प्लान, कोई चीज अपने आप दुर्घटना नहीं, सब कुछ भगवान के योजनाबद्ध होता है, एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है दुनिया में। आगे पृथ्वी महारानी कह रही है गाय के रूप में, सरगादियो अस्या अनो अरुणंधी शक्ति भी ही द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्म भी तस्मै समुन्ध निरुद्ध शक्त्यै नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे, नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। वेदसे का मतलब आदि कारण, सबके कारण, कारणों के आदि कारण, ये सब कारणों के कारण परम पुरुष भगवान आपको नमस्कार है। ये पृथ्वी महाराज को कहती हैं कि आप परस्मई का मतलब परम पुरुष, परम पुरुषाय, हे परम पुरुष भगवान, आप सारे कारणों के आदि कारण है, आपको मेरा नमस्कार है। कौन से कारणों के आदि कारण है, सर्गादि, सर्ग का मतलब सृष्टि, आदि का मतलब पालन और संहार, सर्गादि। यही श्लोक जन्मादि के नाम से भागवत का पहला श्लोक है, जन्मादि सर्गादि एक ही बात है। यो अस्य अनुरण शक्ति भी ही, ये आप क्यों करते हैं, ये कार्य आप क्यों करते हैं भगवान, अस्य इस भौतिक जगत में ये कार्य क्यों करते हैं, अनुरुद्ध, अनुरंधी का मतलब है शक्ति भी, अपनी आप शक्तियों के द्वारा ये सारे सृष्टि आदि के कार्य करते हैं, काय के लिए करते हैं, अपनी जीवों के कल्याण के लिए करते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं, बद्ध जीवों के मुक्ति के लिए करते हैं। तस्मयी समुद्ध निरुद्ध शक्ति, फिर भी ये जो आपके कार्य है इसमें तीन शब्द और है, कला इसके ऊपर चर्चा हुई थी, शक्ति भी के पीछे तीन शब्द हैं, द्रव्य क्रिया कारक चेतना आत्म भी। ये पांच शब्दों के अर्थ कल, इनमें से कम तीन शब्दों के अर्थ कल कहे थे। ये शब्द इनके अर्थ आपको आने चाहिए। द्रव्य का मतलब पांच भूत, पृथ्वी जल आकाश वायु आदि, इसको कहते हैं द्रव्य। और क्रिया कहते हैं इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां आदि, ये क्रिया है, क्रिया जिनके द्वारा होती है। और कारक कहते हैं इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता। तो पहला जो है अधिभूत है, क्योंकि वो प्रकृति के पांच भूत है, और दूसरा अधिदेव है जो कारक, ये है देवता जो हर इंद्री के स्वामी है। और चेतना का अर्थ है बुद्धि, या चेतना का अर्थ है बुद्धि अंतःकरण, और आत्म भी का अर्थ है अहंकार। तो जो सृष्टि होती है उसमें ये पांच चीजें होती हैं, द्रव्य होता है, क्रिया होता है, कारक होता है, चेतना होती है, आत्म भी। तो सृष्टि होती है इनके द्वारा। पहले जो द्रव्य और क्रिया ये तो भौतिक चीजें हैं, कारक देवता इसके अधिदेव है, और चेतना आत्म भी इसके कारण है, क्योंकि अंतःकरण में कई जन्मों के संस्कार होते हैं और झूठा अहंकार मैं बनने का हमारा इस भौतिक जगत में आने का कारण है। आत्म भी का अर्थ है अहंकार। तस्मयी इसलिए समुन्ध निरुद्ध शक्ति, समुन्ध निरुद्ध शक्ति, आपकी शक्ति के द्वारा कभी ये प्रकट होते हैं और कभी अप्रकट होते हैं। सृष्टि कभी होती है, कभी लय प्रलय हो जाती है। इसलिए भगवान हे परम पुरुष, सब कारणों के आदि कारण, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे नाथ, हे भगवान, इस परम पुरुष भगवान, आपकी जो स्वयं शक्तियां हैं, जैसे कि द्रव्य आपकी शक्ति है, इंद्रियां ये सब, देवता ये सब आपकी शक्तियां हैं, यही सारे इस भौतिक जगत के द्रव्य आदि जो कुछ भी है वो शक्तियों का, ये आपकी शक्तियां जिनके आप आदि कारण हो। तो इसका मतलब ये जो ये जब चीजें हैं, इनके नाम लिखे, शक्तियां कौन सी आपकी, द्रव्य, और द्रव्य के बाद आपकी कौन सी शक्ति, इंद्रियां, जो दूसरी इंद्रियां हैं उसके लिए क्या शब्द लिखा था, हाँ दूसरा नंबर शब्द क्या है, द्रव्य क्रिया, ये आपकी दूसरी शक्ति क्रिया, तीसरी आपकी शक्ति है कारक देवता, चौथी आपकी शक्ति है चेतना, और पांचवी है झूठा अहंकार, और भी सब कुछ। और इन्हीं शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि का आप सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और इसी के द्वारा कभी ये सृष्टि दिखती है और कभी अदृश्य हो जाती है, कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। इसलिए परम पुरुष भगवान, आप ही इनके सब कारणों के आदि कारण है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। और इसमें जो शब्द था, किसके लिए सृष्टि करते हो, तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, भक्तों के हित के लिए सृष्टि करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो। किसके द्वारा करते हो, अहंकार बुद्धि आदि के द्वारा, इंद्रियां शरीर इंद्रियों के देवताओं के द्वारा। तो चक्रवर्ती बात लिखते हैं कि हम आपको, पृथ्वी माता कहती है कि हम आपके चरणों में प्रणाम करके नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और ये सृष्टि आपके शक्तियों के द्वारा होती है, जिसमें द्रव्य है और द्रव्य के साथ क्रिया है, क्रिया के साथ कारक देवता है, द्रव्य क्रिया कारक, और बुद्धि है चेतना, और आत्म भी है झूठा अहंकार। ये काय के लिए है? बोले भक्तों के लिए। अनुरंधी उसका अर्थ लिखा है भक्तों के लिए। कैसे भगवान है? समुंधा अब महान है, और निरुद्ध आपके अंदर विरुद्ध आभास होता है, आपकी शक्तियां ऐसे काम करती हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध दिखता है। ये क्या विरुद्ध है? बोला कहीं रक्षा करते हैं और कहीं विनाश करते हैं, ये दोनों शक्तियां आपके साथ साथ काम करती रहती और दोनों शक्तिशाली हैं और आप दोनों के स्वामी हैं। आप रक्षा भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। बोला कैसे? बोला जब आपकी इच्छा हो, आपको स्वामी है, स्वतंत्र है, जब चाहो तब करो, बस इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। प्रभुपाद जी थोड़ा सा सृष्टि कैसे होती है उसका हमको सूचना दे रहे हैं इस तात्पर्य में कि सारे कार्य शुरू होते हैं सृष्टि के आरंभ में, जब महत तत्व जिसके अंदर प्रकृति के तीन गुण समान अवस्था में होते हैं, उनमें जब क्षोभ पैदा होता है, काल के द्वारा भगवान की दृष्टि पड़ती है, क्षोभ पैदा होता है, जीव उसके अंदर स्थापित किए जाते हैं, तो फिर उसके अंदर से मन, अहंकार और इंद्रियां ये सब प्रकट होने लगते हैं, फिर इनके विषय प्रकट होने लगते हैं, ये सारी क्रिया ऐसे चालू हो जाती है। ये सब जितने हैं ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा होता है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, कभी कहीं एक बटन, आजकल इतना आधुनिक कहा जाए कि विज्ञान की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म बना हुआ है, आईटी इंडस्ट्री का समझ लो, कि एक जगह बैठा हुआ एक बटन दबाए तो बहुत सारे कार्य एक के बाद एक ऐसे अपने आप धारावाहिक होने लग जाते हैं। बैठा हुआ धरती पे है, आकाश में कंट्रोल कर रहा है, जो उड़ रहे हैं जहाज, कौन वहां पहुंचा है, कहां उतरेगा, जैसे आप ये देखें कि धरती के ऊपर बैठा हुआ सब कंट्रोल कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस ऐसे उदाहरण से हम कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं किया, संकल्प किया सृष्टि हो जाए, मानो एक बटन को उंगली लगा ली और सब काम अपने आप चालू हो गए, सब सृष्टि के कार्य शुरू हो गए, कैसे होना है वो काम अपने आप शुरू हो गए। और ये कैसे सब होती है? ये योजना भगवान की अचिंत्य है। अब भगवान आगे कह रहे, अब पृथ्वी माता कह रहे, सवई भवानात्म विनिर्मितम जगत। वो जो सब सृष्टि करते हो ना भगवान, आप भगवान जब सृष्टि की तो मेरी भी सृष्टि की, मैं भी तो आपकी एक सृष्टि हूं। जगत जब जगत की सृष्टि की, उसका विनिर्मित मतलब उसका आपने निर्माण किया तो मेरा भी किया। भूतेन्द्रियांतःकरणात्मकं विभो, भूत का मतलब पांच भूत, इंद्रिय, अंतःकरण का मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का। भूत इंद्रिय अंतःकरण आत्मकं विभो, ये सब भगवान आपने किया। संस्थाप्यैषम अज माम रसातला, हे अजन्मा भगवान, आपका जन्म नहीं होता, इन सबकी सृष्टि किया और फिर इसके लिए आपने रसातल में, गर्भ सागर में मैं डूबी हुई पृथ्वी थी, उसको आपने अभ्युज्जह आरंभस्य आदि शुक्रः, आपने आदि वारह देव के अवतार में मेरे को धारण करके और आपने मेरी रक्षा की थी, तो आप पहली रक्षा भी आपने की और अब मारने भी आप ही आ रहे हैं, इन दोनों के पीछे आपकी कोई योजना होगी। तो पृथ्वी महारानी क्या कह रही है? भगवान आप तो हैं अजन्मा, एक बार आदि वारह के रूप में आपने मेरे को गर्भ सागर के अंदर रसातल में पड़ी थी वहां से लाकर आपने और यहां स्थापित किया, और इसलिए स्थापित किया आपकी शक्ति के द्वारा ताकि ये जो आपने सृष्टि की है अंतःकरण आदि की प्राणियों की, ये सारे संसार को मैं धारण कर सकूं, तो ये तो आपने ही कार्य किया था। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये श्लोक के और एक और आगे श्लोक है, दो श्लोक इस और आगे आने वाले श्लोक में पृथ्वी महारानी भगवान से कृपा की, दया की प्रार्थना कर रही है, भगवान को याद करा रही है कि आपने ही तो मेरी रक्षा की थी, आपने ही हिरण्याकश ने मेरे को गर्भ सागर में धक्का दे दिया था, मैं रसातल में चली गई थी, आप ही मुझे निकाल कर लाए थे, ये याद दिला रही है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब आदि वारा के रूप में आए थे तो उन्होंने धरती को धारण किया था, धरती जो जल निमग्न रसातल में डूब गई थी, असुर हिरण्याकश उसको ले गया था, अपने स्थान से उसको उखाड़ के ले गया था। तो असुर कितना शक्तिशाली होगा कि पूरे इस भूमंडल को उखाड़ दिया। दूसरे श्लोक में आगे क्या कह रही है पृथ्वी, ये सुनिए। आपम उपस्ते मैना व्यवस्थिता, आपने मुझे निकाला ना, तो आप कहते हैं जल को, जल के ऊपर आपने मुझे नाव के रूप में, नौका के रूप में स्थित किया, काय के लिए, प्रजा भवानाद्यक्षित कील, ये जो आपने सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा की ना, इसको धारण करने के लिए मेरे को आपने नौका की तरह पानी के ऊपर अपनी शक्ति डाल के इसके अंदर, मैं तो आपकी शक्ति से खड़ी हूं। ऐसे भगवद गीता में भगवान के गाम आविश्यांच भूतामी धार्यामी अहम ओजसा, वहाँ गाम का अर्थ है पृथ्वी, उसमें मैं प्रवेश करके और उसको मैं धारण करता हूँ तब वो अपनी जगह पे खड़ी है। और आगे कहते हैं सवीर मूर्ति हे, आज वही जिस भगवान ने मेरे को गर्भ सागर से निकाल कर और जल के ऊपर अपनी शक्ति से नौका बनाकर प्रजा को धारण करने के लिए स्थापित किया था, वो ही आज वीर रूप में, आज एक वीर क्षत्रिय के मूर्ति के रूप में प्रकट हुए है। असंभूत धराधर, आपका नाम तो भगवान है धराधर, धरा कहते हैं पृथ्वी को और धर कहते हैं धारण करने वाला, जैसे गदाधर भगवान का नाम है, जैसे गोवर्धनधारी नाम है भगवान का, ऐसे भगवान का नाम है धराधर। तो हे भगवान धराधर, आपका नाम ये हो गया, यो माम पयसी उग्र शरो जिगान ससी, आज आप अपने एक वीर क्षत्रिय के रूप में हाथ में बाण लेकर उग्र बड़ा भयंकर मैं देख रही हूं और मेरा वध करना चाहते हैं, मेरा मेरे को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, आप स्वामी हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इस प्रकार, एक बार तो आपने हमारी रक्षा की थी, जल से बाहर लाए थे, आपका नाम धराधर हो गया भगवान, और आपने मेरे ऊपर सारी आपकी प्रजा को धारण करने के लिए स्थापित कर दिए, और अब आप एक वीर के रूप में क्षत्रिय के रूप में मेरे सामने खड़े हैं और मुझे तीक्ष्ण बाणों से भेद के मारना चाहते हैं। मैं तो एक नौका हूं, सब चीजों को धारण करके खड़ी हूं, जैसे आपकी इच्छा हो भगवान। चक्रवर्ती पाद कहते हैं आपकी इच्छा थी कि मेरे अंदर जो प्रजा है, पृथ्वी के अंदर प्रजा क्या है, बीज है सारे, वनस्पति सारा उसके अंदर है, उसकी रक्षा के लिए आपने मुझे नौका बनाई और मेरे ऊपर सारी प्रजा को धारण करने की आपने शक्ति दी, आपने ही ऐसे किया, आज पृथ्वी के रूप में आप वीर बनकर फिर मुझे मारना चाहते हैं, क्यों तीखे बाण से क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं दूध नहीं दे रही हूं। चक्रवर्ती पाद एक भाव लिख रहे हैं इसमें, आप हो धराधर, मैं हूं पृथ्वी आपकी पत्नी, विष्णु पत्नी भगवान की है, ये वारहा देव की पत्नी है पृथ्वी। जब पृथ्वी को वारहा देव ने उठाया तो उनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ भौमासुर। तो पृथ्वी को भगवान की पत्नी कहा जाता है। तो वो कहती है मैं हूं आपकी, आप धराधर है, मैं आपकी पत्नी हूं। आपने प्रजा को धारण करने के लिए मेरे को नौका बनाया, उसके ऊपर सारी प्रजा को स्थापित किया। आप मेरे पति हैं और मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैं बच्चों को दूध नहीं दे रहा हूँ, दीर दे रही हूँ। आपके बच्चे हैं वो मेरे बच्चे भी हैं, मैं उनको दूध नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप मुझे मारना चाहती हैं। आप कहते हैं इसका अर्थ ये है, चक्रवर्ती पाद है, इसका अर्थ ये है, ये बच्चे सारी मेरे गोद में है, आपके बच्चे हैं मेरे बच्चे, आप मेरे पति हो, ये मेरी गोद में है और ये उदंड हो गए हैं, ये अपराधी पापी हो गए हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा दंडित करने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए ताकि उनके अंदर अच्छे गुण आ जाएं, थोड़ा सा उनका दूध बंद कर दिया है, तो आप मेरे ऊपर क्रोधित हो गए हो, कहते हो इनको दूध नहीं दे रही हो, आप ही तो घर के स्वामी हो, मैं घर की गृहिणी हूं और आप मुझे इसके लिए दंड देना चाह रहे हो। इस भाव को चक्रवर्ती पाद ने ऐसे लिखा है जैसे पत्नी कभी घर में शैतान बच्चे को एक आधे घंटे के लिए भोजन न दे तो उसके लिए पति थोड़ी उसको कहेगा तेरे को मृत्यु दंड दे दूंगा, तुम मेरे बच्चों को क्यों नहीं को खाना खिला रही हो। बच्चे तो दोनों के हैं, स्नेह दोनों को है, परंतु शिक्षा दे रही हूँ, ये भाव है। भगवान श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का एक नाम है धराधर, उसका मतलब है पृथ्वी को वारादेव के रूप में अपने मुख के अगर भाग के ऊपर धारण किया। और इसलिए पृथ्वी गाय के रूप में भगवान के विरुद्ध कार्य, पहले रक्षा और फिर मारण के कार्य, इन दोनों कार्य के विषय में कह रहे थे कि आपने ही मेरी रक्षा की थी, अभी आप ही मेरा संहार करना चाहते हैं, एक नौका रूप में जल के ऊपर आपने ही स्थापित किया और अभी आप डुबाना चाहते हैं, इन आपके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता है, कम बुद्धि के कारण मानव ऐसे कार्यों को समझ नहीं सकता है। मैं ऐसे क्यों कर रही हूं, ये लोग आपके पास क्यों शिकायत लाए हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 35वां श्लोक, नहीं 36वां, मेरे ख्याल में पूर्णाहुति का श्लोक है। न्यूनम जनाए इहतम ईश्वराणाम अस्मद् विधाहि तदगुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्त वृत्तम भी वृत्मा भी बीश तेभ्यो नमो वीर यश करेभ्य। न्यूनम निश्चित रूप से जनाही जनाईर इहितम, ये जो प्रजा के कार्य हैं ईश्वराणाम, ईश्वराणाम बहुवचन में, बहुत सारे ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक ही है, उनके नाना अवतार है, जैसे एक अवतार आपका ही है वारादेव और दूसरा अवतार आपका ही है पृथु, तो ऐसे एक ही भगवान के अनेक रूपों में, अनेक अवतारों में, इस बहुवचन का अर्थ ये नहीं है कि बहुत भगवान है। अस्मद विधाई तदगुण सर्ग मायया जैसे मैं एक हूं, एक आप भगवान, आप जो है अपने तीन गुणों के द्वारा सृष्टि करते हैं और जो माया से मोहित हो जाते हैं, जिनका मन वो नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूं। आपका यश वीर यश करे ब्या, आप तो बड़े वीर हैं और आपका यश सदा गाया जाएगा। हे भगवान, हम आपकी शक्तियों, जैसे आपकी अनेक शक्तियां हैं, उनके अंतर्गत मैं भी एक शक्ति से आपकी ही सृष्टि हूं, और जो शक्ति आपकी जिसके द्वारा ये संसार बनता है वो तीन गुणों की है, और उसी शक्ति के द्वारा मैं विमोहित हो गई हूं ऐसे लगता है, आपके भक्तों के कार्यों को ही समझना मुश्किल है, तो फिर आपके कार्यों को समझ पाएं, आपके लीलाओं को समझ पाएं, ये कैसे संभव है? इसलिए जो कुछ हमको दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध दिख रहा है, आश्चर्यजनक दिख रहा है, ये सब आपकी लीला है और माया के कारण हम इसको समझ नहीं पाते हैं। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, भगवान आपकी इच्छा को हम कहते हम, और जैसे देवता की स्त्रियां और उनका संतान ये नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? कि उनके मन को माया ने विमोहित कर दिया। जो आपका शरण लेते हैं वो केवल समझ सकते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं, जो बड़े दानी हैं उनका गुणगान गाया गया जाता है, ऐसे चक्रवर्ती पाद ने इसका अर्थ लिखा है। और चक्रवर्ती पाद का भाव है कहते भले देवताओं की स्त्रियां और उसका संतान और उनके सेवक ऐसा मान भी लें कि आप मुझे मारेंगे, परंतु मैं जानती हूं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा को कोई नहीं समझ सकता है। ये नहीं समझ सकते देवता की स्त्रियां, उनके पुत्र, उनके सेवक, देवता स्वयं नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आपकी माया सबको मोहित कर देती है। ये शरीर है, देवता का शरीर हो या मानव का शरीर हो या पशु का शरीर हो, ये तो शरीर ही माया का बना हुआ है, इसलिए वो मोहित है। जो आपका शरण लेता है, चित्त वृत्तम भी ही जो आपके शरणागत है, मैं आपके चरणों का शरण लेती हूं, जो बड़े उदार दयालु और बहुत बड़े दानी है, उनकी महिमा गाई जाती है। अगर आप उनके ऊपर, भगवान अगर आप उनके ऊपर कृपा न करें, तो फिर इन सब का नाम निशान मिट जाएगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कि भगवान के कार्य, उनके नाना प्रकार के अवतारों के समय सब असामान्य होते हैं, अद्भुत होते हैं, दिव्य होते हैं, अद्वितीय होते हैं, और मानव को उनको समझना संभव नहीं है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान की सारी लीलाओं को, सारे कार्यों को अचिंत्य समझना चाहिए, हमारे मन की पहुंच से परे हैं, हम उनको नहीं समझ सकते हैं और उनको समझा भी नहीं सकते हैं। ये कैसे हो रहा है? पत्थर तैर रहा है समुद्र के ऊपर, राम जी का सेतु बनता है और घास डूब जाता है, कैसे होता है? भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इतनी बड़ी भारी धरती पानी के ऊपर तैर रही है और समुद्र के अंदर ज्वार बाटा आता है, आग निकलने लगती है, वड़बा अग्नि कहते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? पानी में आग लग सकती है, पानी के ऊपर धरती तैर सकती है, ये सब भगवान के जो कार्य हैं, और अवतार के समय जो भगवान कार्य करते हैं, जैसे रामचंद्र का सेतु बांधना या कृष्ण भगवान का गोवर्धन धारण करना, कौन सी बड़ी बात है? गोवर्धन एक छोटा 21 किलोमीटर का पर्वत भगवान ने उंगली पे उठाया, कौन सी बड़ी बात है? इतने सारे लोक आकाश में उनकी इच्छा से तैर रहे हैं, जिनकी इच्छा इतनी शक्तिशाली कार्य कर सकती है, उनकी उंगली से एक पर्वत उठ जाए तो कौन सा आश्चर्य है? परंतु ये बातें समझने के लिए भगवान के अचिंत्य का, भगवान के कार्यों को, भगवान की लीलाओं को अचिंत्य समझना चाहिए। भगवत गीता का तो ये प्रसिद्ध श्लोक है कि भगवान के लीला को, जन्म को, जन्म कर्म भगवान की लीला को या भगवान के कार्य को और भगवान के जन्म को और भगवान के रूप को जो तत्व से दिव्य समझता है, वास्तव में दिव्य समझता है, संसार से परे है, वो तो भगवान को पा ही लेगा, वो तो मुक्त हो गया। और मुक्त होना बहुत दुर्लभ है, करोड़ों में कोई एक होता है जिसको ऐसा विश्वास पक्का हो जाए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान तो नित्य श्री कृष्ण अपने गौलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं, परंतु वहां निवास करते हुए भी भगवान अनंत रूपों में, कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वाराह के रूप में अवतार लेते हैं। संकृष्ण जो बलराम जी से, बलराम जो श्री कृष्ण से विस्तार होता है, और फिर वहां से जितने अवतार आते हैं वो सब कला कहलाते हैं। अवतार की परिभाषा ये है कि ये सब, इन सब का, प्रायः सब का, कुछ को छोड़कर वैकुंठ के में आध्यात्मिक जगत में अपना अपना लोक है, वहाँ वो रहते हैं, और वहाँ से इस धरती के ऊपर जब आवश्यकता पड़ती है किसी विशेष कार्य की तो अवतार लेकर आते हैं। अवतार लेने का अर्थ है उतर के नीचे आना, वहाँ रहते हैं, वहाँ से नीचे आ जाते हैं। तो जब यहाँ आते हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं रहते हैं, यही बढ़िया, यही है, यही अचिंत्य शक्ति है, यही भगवान का अचिंत्य कार्य है, वहां भी है और यहां भी है। ऐसा नहीं है वहां जब भगवान यहां अवतार लेते आते हैं तो फिर आध्यात्मिक जगत बंद हो जाता है, ताला लगा के आते हैं। जैसे हम घर से दिल्ली से जाते हैं वृंदावन तो घर को ताले लगा के जाते हैं, तो हम दिल्ली में तो नहीं होते। तो ऐसे भगवान नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो आदि पुरुष है, सारे अवतारों का स्रोत है, अवतारी है। यहाँ ईश्वर बहुवचन में उसका अर्थ ये नहीं है बहुत से भगवान है, भगवान एक ही है परंतु उनके नाना रूप हैं। सामान्य लोग कभी भगवान के विपरीत कार्यों को देखकर आश्चर्य करते हैं और उसके पीछे भगवान की क्या योजना है उसको नहीं समझते हैं। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान एक चोर के हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हैं और चोर को कहते हैं कि आज इसके घर में जाके डाका डालो, और उस जिसके घर में डाका डालने चोर जाता है उसमें, उसके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, उसको कहते हैं चोरों से और लुटेरों से और ऊंचाई गिरों वाले से अपने आप को सावधान रखो। दोनों के हृदय में कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब राज करने को तैयार नहीं था कि मेरे कारण महाभारत के युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार हो गया और मैं इस पाप के राज के ऊपर नहीं बैठूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण उसको समझा रहे थे नहीं बैठो। एक तरफ भगवान अपने मुख से कह रहे थे युधिष्ठिर मान जाओ और बैठो, और दूसरी तरफ भगवान उसी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे थे युधिष्ठिर के, और उसको कह रहे थे मेरी बात मत मानो। अब दोनों विपरीत कार्य, बाहर से कह रहे हैं कि मानो और अंदर से उनके हृदय से परमात्मा से कहते मत मानो। ऐसे क्यों कह रहे हैं? उनके पीछे योजना क्या है? तब पता लगा उनकी योजना यह है किसी की बात नहीं मानो, हम विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे परम भक्त भीष्म पितामह के शिक्षा से युधिष्ठिर महाराज राज को स्वीकार करेगा। हम ये श्रेय हमारे भक्त भीष्म पितामह को देना चाहते हैं, ये भगवान की इच्छा है। अपनी बात न माने वो भी स्वयं योजना बना रहे हैं। तो ऐसे कार्य भगवान करते हैं जो बिल्कुल विपरीत दिखते हैं, परंतु उसके पीछे भी भगवान की कोई विशेष योजना होती है। इसलिए ऐसे विपरीत कार्यों के पीछे भगवान की योजना समझ में नहीं आए तो उसको बेकार है ऐसा नहीं समझना चाहिए, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। इसलिए करना क्या चाहिए? प्रभुपाद जी कहता है इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि भगवान का शरण लेना चाहिए और पूर्ण हृदय से भगवान हम आपके हैं, आप हमारे रक्षक हैं, तब हम बहुत शांतिपूर्वक जीवन में जी सकते हैं। तो शांति पूर्वक जीवन में जीने के लिए पूर्ण रूप से 100% भाव बना के भगवान श्री गोविंद हरि कृष्ण का शरण लेना चाहिए। इस श्लोक के साथ ये अध्याय पूर्णाहुति के ऊपर पहुंचता है। आगे कल तो रविवार की छुट्टी है, सोमवार को आगे का जो कथा होगा उसको करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?